मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी यहाँ दो किताबों का विमोचन हुआ और एकांत संबंधी जो किताब लिखी गई उसके संबंध में डॉक्टर साहब ने आपको स्वयं परिचय दिया। विज्ञान के प्रोफेसर होने के बावजूद जिस तरह वे संस्कृत के श्लोक बोल रहे थे, अमृतचंद्र के कलशों को उद्धृत कर रहे थे, उससे आप समझ सकते हैं कि उनका न केवल विज्ञान पर अध्यात्म ग्रंथों पर भी उतना ही अधिकार है। और हमने कुछ समझ करके ही उन्हें समय सार की टीका करने की बात उनसे कही है। आज के जो विज्ञान के जमाने में कुछ लोगों के दिमाग में एक फितूर खड़ा रहता है कि विज्ञान यदि जैन धर्म को सर्टिफाइड करे तो हम उसे स्वीकार करें। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। एक बहुत बड़ी जगह है पर यूनिवर्सिटी में परमात प्रकाश से कोई सब्जेक्ट देकर के बुलाकर भाषण दिया था, बुलाया था, तो उसने बहुत बड़ा अच्छा लेख भी लिखा है और पढ़ा भी है। वो मैं कहूंगा कि आपको भेजे कि उसने ये बात जरा अलग तरीके से सिद्ध की कि ये कहा कि हमारे धर्म को अदालत विज्ञान की अदालत में खड़े होने की क्यों जरूरत है, तो विज्ञान हमारे धर्म की अदालत में क्यों खड़ा नहीं होता है। इस एंगल से विचार किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि हमें यदि अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है तो सब एंगल से हमें विचार करके ऐसा प्रयत्न करना होगा कि हर तरह के लोगों तक वो बात पहुंचे। धन्य मनन दशा का भी आपके सामने विमोचन हुआ। हम मुमुक्षु लोग उन लोगों में से हैं कि जिन पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम मुनियों को नहीं मानते। क्या किसी व्यक्ति विशेष को मुनि मानने का नाम मुनियों को मानना है? तो देवशास्त्र गुरु में जो गुरु अपने आते हैं, जिनके हम रोजाना पूजन करते हैं, एक साथ तीनों को लेते हैं, जासों पूजो परम पद देव सास गुरु की। और मैंने जो देवसास गुरु की पूजन लिखी उसमें तो ये लिखा है चलते फिरते सिद्धों से गुरु, उन्हें सिद्ध भगवान की संपत्ति में खड़ा किया है। तो शायद मैंने एक दिन बताया था ताकि सिद्ध चक्र विधान में ऐसी पंक्ति आती है साधु सन सिद्ध अकंप विराजे। फिर भी हम पर ये आरोप क्या कैसे उचित माना जा सकता है? तो ये कहानियां आप पढ़ेंगे और मंगलायतन नामक पत्रिका में महीनों से वर्षों से लगातार मुनियों के संदर्भ में आगम के प्रमाणों के आधार पर लिखा जा रहा है। तो जो मध्यस्थ प्रकृति के लोग होंगे उनका कुछ न कुछ भ्रम तो टूटेगा ही। अभी हमने छेडाला के आधार पर श्रावकों और मुनिराजों के संदर्भ में कुछ प्रवचन किए थे टीवी के लिए, वो बनाए और टीवी पे आए ही हैं। छठवीं ढाल के आधार पर, चौथी ढाल के आधार पर, तो वो उसकी रिपोर्ट विद्यानंद जी मुनिराज को मिली तो उन्होंने को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने दो बातों का मुझे बात कही कि एक तो भले ही विदेश जाना बंद कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन टीवी के प्रवचन बंद नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। मैंने कहा महाराज आपने कहां से देखे? कि नहीं, मैंने तो नहीं देखे, देखने वालों ने मेरे से आकर के जिस तरह बताया है तो बहुत बढ़िया काम है। अब तो उनके भी शुरू हुए हैं शाम को 8:25 से। दूसरी बात उनने ये कही कि जो मुनि का स्वरूप आपने बताया है टीवी पे, तो आप एक मुनि के स्वरूप के बारे में किताब लिखो। ये बहुत कठिन काम था। मैंने कहा महाराज वैसे ही तो हमारा इस दुनिया में रहना मुश्किल हो रहा है। आप हमें क्यों धर्म संकट में डालना चाहते हैं? और मैंने तो उनके हाथ जोड़ लिए कि महाराज मेरे से ये काम नहीं होगा। फिर तो मैंने भाई साहब को कहा, रतन चंद जी को, और उनके दिमाग में जम गया। तो उन्होंने खूब स्टडी करके आपके मंगलायतन की किताबों की भी बहुत स्टडी करी और वैसे भी बहुत करी, और एक किताब लिखी है जिसका नाम रखा है चलते फिरते सिद्धों से गुरु। किताब का नाम ही है। फिर ये समस्या आई कैसे, कहां से प्रकाशित किया जाए, क्यों है? तो महाराज ने कहा कि तुम मत प्रकाशित करो इसे, तुम करोगे तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जिन लोगों को पढ़वाना है वे पढ़ेंगे ही नहीं क्या है? और उनके आदेश से वो विद्वत परिषद की तरफ से, विद्वत परिषद ट्रस्ट की तरफ से छप रही है, ख्याल नहीं ना? वो विद्वत परिषद का अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन ट्रस्ट का अध्यक्ष विद्वत परिषद नामक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी है, राजा राम जी है, और उनसे आदेश दिया कि आप इसे छपाओ, क्यों हमको दूर ही रहे। उसके प्रकाश की दो पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें जो लिखी है कि इस कृति को पढ़कर जिन लोगों के हृदय में गुरुओं के प्रति अश्रद्धा है, सच्चे गुरुओं के प्रति अश्रद्धा है, निश्चित रूप से वो भी कुछ ना कुछ कम तो होगी, और साथ में जो सुफलाचार है उस पर भी थोड़ा बहुत अंकुश अवश्य लगेगा। और उस पर उनने खुद लिख के दिया है विद्यानंद जी महाराज ने, और उसमें इस कृति के लिखने के लिए पंडित रतन चंद जी को आचार्य कल्प की उपाधि दी है उनने खुद लिख के, विद्यानंद जी ने, उनके हाथ का लिखा हुआ है तो उसमें छप के आएगा, और वो उनके आदेश से छप रही है, वो आएगी कब लोगों के हाथ, लोगों में पढ़ने में पढ़ना। यानी मुझे ये भरोसा है कि वो कृति ऐसी है कि मुमुक्षुओं का भी बहुत भ्रम भंग होगा और गैर मुमुक्षुओं का भी बहुत भ्रम भंग होगा, और सत्य हृदय से कोई संत पढ़ेंगे तो उनको भी लाभ होगा। कौन कितना लाभ लेगा ये तो भविष्य बताएगा, तो कौन कितना उपद्रव करेगा ये भी भविष्य बताएगा, लेकिन अब हम लोगों को वो डर नहीं रहा है क्योंकि हम किनारे पे आ गए हैं, तो कल नहीं तो आज सही। हमने सोच लिया है लाखों वर्षों तक जीऊं चाहे मृत्यु भी आज ही आ जावे, बहुत पवित्र भाव से किसी के विपक्ष में नहीं, एक शब्द किसी के विरोध में नहीं लिखा, आगम के आधार पर बिल्कुल विद प्रूफ जो मुनि धर्म का सच्चा स्वरूप है वो लिखा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीजें आ रही हैं सामने, इन सब से हमारे विरुद्ध जो कलंक लगाया जाता है कि हम मुनि गुरु को नहीं मानते हैं, वो निश्चित रूप से दूर होगा। अब मैं जो जिस बारहवीं गाथा की चर्चा आपसे कर रहा हूँ, अपने पास 3 घंटे हैं और बहुत मार्मिक चर्चा है। अभी तक जो अपन ने चर्चा की वो उसकी टीका में उद्धृत एक गाथा जय जनमयम पवज्जयी है ना, उसकी चर्चा की है। इस गाथा की तो चर्चा हो ही नहीं पाई अभी तक, और इस गाथा में ये लिखा है कि जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार में उपदिष्ट है, और जो परम भाव में स्थित हैं उनके लिए शुद्ध में निश्चय में उपयोगी है, इसका मेन शब्द है। मैं आप इसको गंभीरता से सुने इसके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि इस गाथा का सही अर्थ आपको समझना हो तो जो जो जगह जगह गाथा का अर्थ उपलब्ध है सब जगह पढ़ लेना, और फिर देखना कि आपकी समझ में क्या आया। और आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, बहुत पुराने पुराने मुमुक्षु हैं, अभ्यासी हैं, लेकिन यदि इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही अर्थ समझना है तो आपको ये समय सार अनुशीलन भाग एक में जो 12 गाथा है वो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप ये अनुभव करेंगे कि यदि हम ये नहीं पढ़ते तो इसका जो असली भाव है वो हमारे ख्याल में नहीं आता, और तब आपको इसकी उपयोगिता भी ख्याल में आएगी। देवेंद्र तुमसे भी कहता हूँ पढ़ना भैया। अभी मैं वो बातें सब आपको कहना चाहता हूँ, यदि नहीं पढ़े तो वे कैसे सुन करके भी समझ सकते हैं। इसकी गाथा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो मैं इसमें ही पढ़ के सुनाता हूं। परम भाव में स्थित पुरुषों को शुद्ध में जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं जो व्यवहार नये के द्वारा उपदेश करने योग्य हैं, गाथा में समागत उक्त कथन में मूल समस्या यह है कि गुणस्थान परपाती के अनुसार किन्हें परम भाव में स्थित माना जाए और किन्हें अपरम भाव में स्थित माना जाए, है ना? मतलब ये है कि मैंने पहले दिन कहा था थोड़ा सा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पास ही 5 किताबें हैं, हम 5 सज्जन पुरुषों को देना चाहते हैं, तो सज्जन पुरुष कौन है और सज्जन कौन नहीं है इसका डिसीजन करना कितना कठिन काम है, क्यों? कभी ये बात मैं आपसे कह रहा हूं समझदारों की समझ में आएगी, लेकिन समझदार माने क्या, क्यों? यानी ये शब्द ऐसा है परम भाव और अपरम भाव। मैंने बोला ना कि जब मैंने सबसे पहले समय सार पढ़ा 18-19 वर्ष की उम्र में, तब से वर्षों तक ये मेरे चित्त में प्रश्न गूंजता रहा कि इसका सही अर्थ क्या है, किन्हें परम भाव कहें और किन्हें अपरम भाव कहें। आप समझते होंगे सोचना कि भाई कौन से मिथ्या ऋषि अपरम भाव वाले हैं कि सम्मत ऋषि अपरम भाव वाले हैं, हैं? कि परम भाव वाले सिद्ध भगवान हैं कि सम्मत ऋषि हैं, कौन है? माने परम भाव में स्थित है माने कहाँ है? अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका लिखी उसमें तो उन्होंने एक उदाहरण देके बात समझाई कि 100 टन का जो सोना होता है, क्यों ये उदाहरण दिया ना, वो परम भाव है, और जो उससे नीचे नीचे पंच कम होते जाते हैं ना, समझ लीजिए वो अपरम भाव है। एक ऐसा उदाहरण दिया। अब उसमें ऐसा भी अर्थ निकलता है कि ऊपर जैसे मान लीजिए कि 100 टन का तो पूरा परम भाव हो गया और 99 टन का अपरम भाव हो गया, अब 98 का अपरम भाव है तो 99 वाला क्या है, तो उसकी अपेक्षा वो परम भाव हो जाएगा। अब समझ में आ गया, तो तंत्र को लगाते जाओ ना, आखिरकार तुमने कहा कि व्यवहार नये त्रिकोण तो ये है कि व्यवहार नये का क्या उपयोग है, समझ गए ना? तो तुमने कह दी कि जो व्यवहार अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार नये है, उन व्यवहार नये के उपयोग ही उनके लिए है और परम भाव वालों को नहीं है। अब व्यवहार नये का उपयोग कौन करे, ये परम भाव अपरम भाव का नक्की हुए बिना कैसे हो सकता है, तो ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। अब आप अपने अपने मन में सोचो, जिसने जितना स्वाध्याय किया है अपने आधार पर अब क्या मानते हैं कि परम भाव कौन है और अपरम भाव कौन है। निगोदिया से लेकर मोक्ष तक के बीच में कौन तो परम भाव वाले हैं और कौन अपरम भाव वाले हैं, वो सब आप अपने दिमाग में सोचो। फिर मैं एक एक आचार्य को प्रस्तुत करते हुए और आपके सामने वो उस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक किताब मंगाई है आज, तो मुझे याद है सब, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको उन आचार्यों के वाक्यों को कि परम भाव क्या कहते हैं और अपरम भाव। तो अम्बेचंद को तो मैंने बता दिया, तो उत्कृष्टता से प्राप्त सुलेमान का जो सोना है वो परम भाव है, क्यों? और अनुत्कृष्ट भाव को प्राप्त वो अपरम भाव है। पर उनने तो छुट्टी कर दी इतने से कि हमारा काम तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके आधार पर हम ऐसा नक्की नहीं कर सकते हैं कि ये परम भाव वाले ये अपरम भाव वाले, कि चौथे गुणस्थान वाले परम वाले के पांचवे वाले अपरम वाले, ये नक्की नहीं कर सकते हैं। ایک کتاب تھی جو نحال سنگھ جی سوگانی کی ان کے مرنے کے بعد ان کے پتروں کے آدھار پر چھپی تھی, دیو درشٹی پرکاش, اور وہ گرودیو شری کہتے ہیں سب کو دینا لائق نہیں ہے, اسے مت دھو بکری میں, اپنے ہاتھ پاس رکھتے تھے وہ خود, مطلب جس کو یوگ سمجھتے تھے وہ اس کو بلا کر کے ایکانت میں دیتے تھے, کیا ہمیں بھی دی تھی, پرماتم کو بھی دی تھی, سب کو دی, انہیں بہتوں کو دی اپنے ہاتھ سے, اور گوپت سے بھری سبھا میں کہتے تھے گوپت سے, ارے لاکھوں بٹ گئی میرے خیال سے سب مکھیوں کے ہاتھ میں وہ پہنچ گئی, سمجھتا یہی تھی کہ یدی اچھی دشٹی والے ہوں گے اور جو نرمل دشٹی سے پڑھیں گے ان کی تو سمجھ میں آئی نہیں تو جھگڑا بہت ہو جائے گا کھڑا, آپ سنیں نا اسے جھگڑا بہت کھڑا ہو سکتا ہے, تو اب نرنے کیسے کریں کون پاتر کون اپاتر, بولو گرودیو نے کہتے کہ اپاتر کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں جانی چاہیے, لیکن اپاتر کون اور پاتر کون, سمجھ گئے آپ, ایسے کنڈ کنڈ نے کہہ دیا پرم بھاو میں استھ تھا, پرم بھاو میں استھ تھے اتنے سے نپٹ گئے, اور امرتند نے کہہ دیا سونے کا ادھارن دے کر کے اتنے میں نپٹ گئے, اب دو مہان سنت جو ہمارے تھے وہ تو اتنے میں نپٹا گئے, اور اس سے تو کوئی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ آیا نہیں, کس کو پرم کہیں کس کو اپرم کہیں, اب جیسے میں چار کے بعد چلتے ہیں ان کا نمبر ان کا پاد ان کا ہی نمبر آتا ہے, پر ان کی ایک وشیشتا ہے کہ وہ سمے سار کیا کی ٹیکائیں رتن سار کی پنچاسی کائے کی جو امرت چندر نے جن گرنتوں کی ٹیکائیں لکھی انہیں کی ٹیکائیں ان نے لکھی 300 برس بعد ان کے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امرت چندر کا یعنی کوئی سب سے بڑا بھکت نمبر ایک ایک آدمی ہم گنے تو جے سین کا نام اس میں سب سے پہلا آئے گا, یعنی انہوں نے اتنی گہرائی سے امر چند کو پڑھا تھا اور سچے دل سے سویکار کیا تھا, 300 برس بعد ہوئے, 1000 برس پہلے امر چند اور 700 برس پہلے جے سین, پھر بھی جن جن گرنتوں پر انہوں نے ٹیکا لکھی دیویندر انہیں گرنتوں پہ انہیں بھی ٹیکا لکھی, کیوں بھیا اتنی بڑھیا ٹیکا امر چند کی, کیا آج تک اس ٹکر کی ٹیکا کوئی لکھ نہیں پایا, جیسین بھی نہیں لکھ پائے, پھر کیوں لکھی میں پوچھنا چاہتا, سب سے بڑا ورودھی مانے انہیں کہ سب سے بڑا انیائی مانے, آپ یہ سوچنا ایک ایک پوائنٹ پہ آپ وچار کرنا, ابھی 3 گھنٹے اپنے بہت قیمتی ہیں, یہ وہاں فیڈریشن والوں کا بھبڑ گیا نا, اس لیے بعد میں شانتی سے اپنی بات ہوئے کیا, انہوں نے یہ محسوس کیا کنہوں نے, جیسے ناچاری نے کہ انہوں نے کنب کند نے اور امرت چند نے اور سب باتیں بہت بڑھیا کھولی, لیکن گنستان پر پارٹی سے اس کو نہیں ہٹایا, اونچے اونچی والے نیچے والے, اب کون اونچے کون نیچے, تم گنستان کی بھاشا میں بتاؤ نا ہمیں کہ چوتھے گنستان والے اونچے کے نیچے, بولو کیا سمجھ رہے ہیں نا, تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس سب کو بات کو گنستان کی بھاشا میں بتانا چاہیے, اس لیے انہوں نے گنستان کی بھاشا میں پوری ٹیکا لکھی, ایک بات. دوسری بات کہ انہوں نے نیوں کے تو کہا ویوہار نئے ادھوتارتھ اور نشچے نئے ادھوتارتھ ہے, لیکن ویوہار نئے بھی 4 پرکار کا ہوتا ہے اور نشچے نئے بھی 4 پرکار کا ہوتا ہے, اور پھر وہ ویوہار نئے 3 پرکار کا نشچے نئے ویوہار بن جاتا ہے, دیکھو ماتائیں بہنیں کتنا سمجھتی ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن زیادہ سمجھتی ہوں گی ایسے مان کر کے میں بات کرتا ہوں کیا ویوہار میں سمے سار میں ایک 7ویں کا تھا اور ایک 27ویں کا تھا, 7ویں گاتھا کہتی ہے آتما میں گیان ہے درشن ہے چارتر ہے اس کا نام ہے ویوہار, 27ویں گاتھا کہتی ہے شریر اور آتما کو ایک ماننا ہے اس کا نام ہے ویوہار, ویوہار نہیں ہو بھاسدی جیو دیہو ہو دکھلو ایک کو न दुनिश्चयेन जीवो देहोपि कदापि एकत्वो। तो एक दो शरीर और आत्मा को एक कहना वो व्यवहार जिसके लिए छड़ाला ने लिखा देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, लिखा कि नहीं लिखा, फिर बहिरात्मा मूल है और एक व्यवहार को वो जो शरीर और आत्मा को एक कहे, और एक व्यवहार आत्मा में ज्ञान है दर्शन है चारित्र नहीं है क्या, एक ज्ञान गुण भी है दर्शन गुण भी है चारित्र गुण भी है समझ ज्ञान चारित्र भी प्रकट होते हैं और एक व्यवहार गो, तो व्यवहार व्यवहार में तो कितना फर्क है, और तुम एक ही भाव सबको तोड़ते जाओ तो तुमने कह दिया व्यवहार नए ये है, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो व्यवहार नए से कही है, कौन से व्यवहार के, वो सात में या चार में तुम नाम बताओ, वो अमृतचंद ने नहीं किया, देखो अमृतचंद की कन्या निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ, मैं अमृतचंद का उतना बड़ा भगत हूँ जिसमें मैं मानता हूँ आप में से कोई नहीं होगा, उसका प्रमाण ये है कि मैंने समय सार प्रचन सार की टीकाएं लिखी तो अमृतचंद की टीका का पूरा अनुवाद दिया और जयसेन की एकाधिकाद का जहां जरूरी समझा वो दिया, इसलिए इस रूप में मत देखना इस बात को। एक तो उन्होंने क्या नहीं बताया, गुणस्थान नहीं बताया कि अमृतचंद ने, और दूसरे क्या नहीं बताया, उन नए का नाम नहीं बताया, इस शरीर और आत्मा को जो एक कहने वाला नए है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है, बता रहा था अनेकांत बता रहा था ना भी, देह और आत्मा को कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार ने श्री पति मकान आजाद को, और वो जो नए है वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए है, ये काम इनने जैसे इनने किया क्या। और तीसरा उन्होंने कहा ये बालबोधनी टीका है, सात परिवृत्ति नाम रखा उन्होंने बच्चों को समझाने, बच्चों ने कि जो तो उन्होंने हर शब्द का व्याकरण से भी बताया, इसका जो व्याकरण कैसे कैसे बना है, इस शब्द की घटना कैसे बनी है तो व्याकरण भी बताई, तो तीन चीजें उन्होंने अपनी टीका में अलग रखी जो अमृतचंद की में नहीं पाई जाती है, कौन, व्याकरण, नए और गुणस्थान, माने करुणानियोग, न्याय शास्त्र क्या और व्याकरण शास्त्र, ये तीन चीजें उनको लगा कि इससे लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने ये टीका लिखी। अब थोड़ी बात और बता दूं कि विद्वान उसे कहते हैं कि जिसने अपनी बुद्धि को किसी को गिरवी नहीं रखा, जो पढ़ने के साथ जिसमें सोचने की भी ताकत हो और अपने बुद्धि के बल से किसी निर्णय पर पहुंचने की ताकत हो, तो कहीं कहीं उनको ऐसा लगा कि अमृतचंद ने ये बात कही है तो ठीक तो लगती है लेकिन इसका अर्थ एक और भी हो सकता है जो ऐसा हो सकता है क्या। तो अत्यंत विनम्रता के साथ अमृतचंद के मत को स्वीकार करते हुए और एक अद्वितीय अर्थ ऐसा भी हो सकता है, उनने वो बात भी लिखी, पर ये बात सब यहाँ इस ग्यारहवीं गाथा के संदर्भ में लिखी, चौदहवीं निकली बारहवीं के पहले ग्यारहवीं, मालूम कितना बड़ा अंतर है, कितने लोगों ने ध्यान दिया, समझ लो नई नई बातें हैं ये, इसमें व्यवहार नए अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है, क्यों, और भूतार्थ नए के आशय से जीव संबंधि होता है, अमृतचंद ने यही अर्थ किया, अब जैसे इनने कहा ये अर्थ तो ठीक है ही, एक अर्थ और किया कि निश्चय नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ दोनों प्रकार का है और व्यवहार में भी भूतार्थ और अभूतार्थ, बोलो कितना बड़ा इस गाथा में कितना बड़ा अंतर है, और मैंने बहुत गहराई से सोचा है कि वो अर्थ भी क्यों व्यवहार में भूतार्थ है, वो जो निश्चय नए के चार भेद है ना, तो तीन में निश्चय है वे व्यवहार हो जाते हैं कि नहीं, तो व्यवहार होते ही अभूतार्थ हो गया कि नहीं, तो निश्चय नए भी किसी अपूर्ण से अभूतार्थ हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए आप दानवेल जी है, देखो भैया ये बातें ऐसी हैं, आपको थोड़ा सा नहीं लगे क्या कह दे, मैं हनमजा नहीं आ रहा, लेकिन ये बातें फिर हमारे मन के अंदर ही रह जाएंगी तो क्या होगा, फिर किसको सुनाएंगे, कब सुनाएंगे, हमने लिख दिया आप पढ़ते नहीं हो तो पढ़ के सुनाना पड़ेगा, क्या करें, कहानी किस्सा कब तक सुनाते रहेंगे है? हम उदयपुर में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें बोलेंगे एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कर दी तो अब अपन देखते हैं कि अमृत चंद्र ने तो ऐसा कह दिया और अब वो जैसे न तारी क्या कहते हैं वो अपन देखते हैं इसके पेज नंबर आगे देखिए तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन परम भाव शब्द की व्याख्या में तो गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते परंतु अपरम भाव की व्याख्या में जो कुछ लिखते हैं वह मूलतः इस प्रकार है। ये संस्कृत की पंक्तियां मैंने दी हैं। देखो अभी अब मेरे पर भरोसा कर लो कि क्या लिखा है इसमें, मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में तुमको समझ में तो आएगा नहीं, पढ़ूंगा तो पढ़ लू। अच्छा वो ये कहते हैं देखो ये संस्कृत टीका उन्होंने की लिखी ना, अब फिर ये कहेंगे साहब ये सौंदर्यों ने अर्थ किया पंडित ने, तो मैंने एक वीर सागर मुनिराज हुए हैं अभी सोलापुर में थे, अभी स्वर्गवास हुआ है 2-4 साल 10 साल पहले, मैं उनसे कई दफे मिला हूँ, बहुत अच्छी पक्की अध्यात्म की रुचि वाले थे, तो उनने वो जैसे न आचार्य के समय सार की टीका लिखी, इस जो संस्कृत में जयसेन ने लिखा उसका अर्थ उनने क्या लिखा वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वीरसेन वीर सागर, जो पुरुष अपरम भाव में स्थित हैं अर्थात चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती असंयम समय दृष्टि की अपेक्षा, एक गुणस्थान आ गया ना, और अथवा पंचम गुणस्थान बढ़ती श्रावक की अपेक्षा, जो स्वराग सम्म दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है अथवा सष्टम गुणस्थान वर्ती प्रमत्त अप्रमत संयत की अपेक्षा भेद रत्न लक्षण रूप शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजन बान है। ये अर्थ उन्होंने जयसेन ने लिखा और वीर सागर महाराज ने जो पंचम काल के इस जमाने के आचार्य हुए हैं, क्या जिनसे मैं मिला हूँ कई जगह, एक जगह नहीं बहुत मिले, कई चर्चा हुई बहुत हमारी कई जगह, क्या क्या कहा उन्होंने, किसने कहा कि जो शुभोपयोग में, ये निष्कर्ष बता रहा हूँ मैं आपको, जो शुभोपयोग में स्थित हैं वे अपरम भाव में हैं और जो शुद्धोपयोग में स्थित हैं वे परम भाव में हैं। अब जिन जिन गुणस्थानों में शुभोपयोग होता हो उसे तुम समझ लेना ये अपरम भाव है और जो शुद्धोपयोग है वे परम भाव है, अशुभोपयोग वालों को तो लिया ही नहीं किसी में जो समझे ना। उन्होंने अब यहाँ तक आ गए अपन, कहाँ तक कि वो वे कहते चौथे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में और छठवें में, तो इनमें से दो तरीके से कहा छठमा तो शुभ भाव का ही है, तो चौथे और पांचवें में कभी शुद्धोपयोग होता है कभी शुभोपयोग, समझ गए ना, तो उसमें शुभोपयोग का काल है वो अपरम भाव है और आत्मानुभूति का काल है वो परम भाव है। इस झगड़े में नहीं पड़ना है चौथे में शुद्धोपयोग होता क्या नहीं होता, पांचवें में होता क्या नहीं होता, इन लड़ने देना पंडितों को, तुम इतना समझ लो कि आत्मानुभूति होती है बस खत्म, उसका नाम शुद्धोपयोग देना कि नहीं देना कैसा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा के अनुभव के बिना तो सम्मय दर्शन होता ही नहीं है मेरे ख्याल में, है ना, तो ये अर्थ हुआ इसका। लेकिन हमारी समस्या अभी भी हल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि नफरत ये सब जो लोग बैठे हैं और जो भी ये कहते हैं कि हमें तो सम्मय दर्शन भी नहीं है, जो स्वीकार करते हैं सच्चे दिल से, जो नहीं करते हैं उनसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्या है क्यों, और मुझे से मैं किसी से नहीं कहलवाना चाहता हूँ, तो अब उनके लिए क्या है निश्चय का व्यवहार, तुम उनका प्रश्न तो ये है इस सभा का कि हमारे लिए क्या है,
निश्चय नहीं कि व्यवहार में हम क्या करें, क्यों कि हम तो प्रति गुणस्थान में बैठे नहीं, विभिन्न स्थान समझ में आया ना। अब तो ये सभा का ये सभा क्या करे, तो यदि इनके काम की से गाथा नहीं है तो काय को लेके बैठे हमारे सामने हम क्या करें इस गाथा का, क्यों यदि कोई हमारे मतलब की बात बताओ ना कि हम क्या करें।
तुमने
सुना उसको, तुमने कहा ना पढ़ के बताओ ना कि चौथा गुणस्थान पांचवा गुणस्थान संस्कृत में पढ़ाओ ना, संस्कृत में पढ़ देता हूँ भैया। देखो केशाम जे ए पुरुषा पुनः अपरमे अशुद्ध असंयत सम्यक दृष्टि अपेक्षा श्रावक अपेक्षा सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे सुपयोगे प्रमत्त अप्रमत्त संयता अपेक्षा भेद रत्न लक्षणे बा खिदा स्थता कसमन स्थता भावे जी पदार्थे तेसाम लिखा। चौथा पांचवा छठवा सब गुणस्थानों के नाम लिखे हैं। तो वो जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा थे जिन्होंने आज से 200 वर्ष पहले समय सार की टीका लिखी, उनके दिमाग में ये समस्या खड़ी हुई कि हम क्या करें। और सबसे बड़ी बात ये है, कल जो तीन दिन में अपन ने व्याख्यान दिए उसमें ये आया है कि तीर्थ का लोक हो जाएगा, सुना क्या आपने, तीर्थ के लोक की अपन ने बात करी थी, तीर्थ का लोक हो जाएगा ना। भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि आज तक हमारे पास तक चली आ रही है वो धारा छिन्न हो जाएगी, उसका नाम है तीर्थ का लोक होना। इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि महात्मा गांधी आप लोगों ने देखे नहीं होंगे तो उनका नाम तो सुना ही सुना है, कहते ऐसे महापुरुष थे, ऐसे लोग तो हजारों मिलेंगे कि तुम दूसरों पर गोली चलाओ तो तुम्हें इतने रुपये महीना की तनख्वाह मिलेगी। तुम पुलिस सुपरिटेंडेंट हो ना, और आंदोलनकारियों पर गोली चलाओ और आंदोलन को रोक दो तो तुम आईजी बना दिए जाओगे और 2-4 लाख का पुरस्कार मिलेगा। अब अंग्रेज लोग करते थे कि नहीं ऐसा। अब उनसे सामने लड़ने के लिए गांधी जी ने एक ऐसी फौज तैयार की थी जिनकी मारने वालों की नहीं मरने वालों की फौज तैयार की थी है? और उसका नाम जो है मेरी भाषा में कहता हूं कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना, ऐसी फौज तैयार की थी। तुम ऐसा करना चाहते हो तो हमारे साथ आओ, हमारी फौज में तैयार हो। कि तनख्वाह क्या मिलेगी महाराज जी बता दो ना, मारने वालों की फौज नहीं मरने वालों की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए ना, मारने वालों की तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए ना मरने वालों की। उन्होंने कहा एक नया पैसा तनख्वाह नहीं मिलेगा, तुम्हारा घर भी जा सकता है, तुम्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है, नौकरी होती तो वो छूट जाएगी। क्यों बोलो अब होना हमारी फौज में तैयार भर्ती होना, कोई मिलेगा जीतमल जी एक आध आदमी? अरे आंखों देखी बात है, लाखों लोग इस फौज में भर्ती हो गए। फिर आपने आज ऐसी ताकत, क्यों हर क्षेत्र में पैसे से खरीदने वाले पैसे से खरीदने वाले देखते हैं, हर एक को खरीद लो। क्यों बिकने वालों की फौज तो कोई भी खरीदेगा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बेटा जो मिलता है वह नौकरी कर रहे होंगे तो वो भी जाएगी देवेंद्र, बोलो आना है हमारी फौज में क्या? सब वो तो इतना देते हैं तुम क्या दोगे क्यों बोलो सुजनमल जी, गांधी जी ने ऐसे लोगों की फौज तैयार की थी और वो तिरंगा झंडा लेकर जुलूस लेकर निकालते थे, सामने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैनिकों की घुड़सवारों की टोली लेके खड़े रहते थे कि लौट जाओ यहां से और झंडे को झुका दो, आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। जो हाथ में झंडा लिए रहता था ना उससे बोलते थे कि मैं 3 तक बोलूंगा, और तुम ने झंडा नहीं झुकाया और वापस नहीं लौटे तो मैं गोली मार दूंगा। एक खड़ा रहा, दो तीन, और उसने गोली मार दी, वो मर गया। मरते ही वो तो गिर गया, लेकिन उसके हाथ का झंडा नहीं गिरा, उसने वो थाम लिया पीछे वाले ने। फिर पीछे वाले से कहा, देखो मैं एक दो तीन बोलूंगा और तीन बोलते ही गोली मार दूंगा, नहीं तो झंडा झुका दो वापिस जाओ। तो वो कहता है, क्या बोलता है, एक दो दो, एक दो एक दो। अरे तूने जिसको गोली मारी है मेरे आंख के सामने ये झंडा लेने के अपराध में, मैंने उसके हाथ में से झंडा लिया है, अब मेरे को ये बात कहने की जरूरत है? मारता क्यों नहीं है, क्यों टाइम लगा था एक दो तीन नाटक करता है? हाँ, उसे गोली मारी तो उसके पीछे व्यक्ति ने झंडा थाम लिया, लाखों की लाशें गिर गईं, लेकिन झंडा नहीं गिरा, इसलिए उन्हें छोड़कर सात समुंदर पार भागना पड़ा मारने वालों को। भगवान महावीर ने एक झंडा उठाया था, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, तीर्थंकर, माने तीर्थंकरो तीर्थ तीर्थंकर। उन्होंने तीर्थ किया था, क्या तीर्थ किया था, कि भगवान आत्मा का स्वरूप समझाना दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत को समझाया था, इसका नाम है तीर्थ को करना, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ख्याल में ना, वे गए लेकिन वो झंडा नहीं गिरा, गौतम स्वामी ने वो झंडा थाम लिया। सुबह भगवान महावीर मोक्ष गए और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और वो झंडा उन्हें थाम। फिर 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी मोक्ष गए और उसी दिन सुधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो झंडा उन्हें थाम लिया। वे चले गए लेकिन झंडा नहीं गिरा। उसके 12 वर्ष बाद उन्हें मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उनने वो झंडा थाम लिया। अनुबद्ध केवली बोलते हैं इन्हें। क्या सर, वो भी गए जो शुद्ध केवलियों ने वो झंडा थामा। ऐसे 2500 वर्ष में 125 पीढ़ियां चली गई लेकिन वो झंडा आज तक गिरा नहीं है, वो झंडा आज तक खड़ा है। और आज वो झंडा किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ख्याल में है ना, है? है? हम लाए हैं आजादी को, क्या संभाल के बच्चों तुम रखना संभाल के, ख्याल में है कि नहीं आई? लड़ने वालों को लड़ने दो, मरने वालों को मरने दो, ख्याल में से। लेकिन जो असली उत्तराधिकार है भगवान महावीर का, ये रीतरागी तत्व ज्ञान, ये कुंद कुंद के पास आया, अमृतचंद के पास आया, जयसेन के पास आया, क्यों बनारसी दास के पास आया, पांडे राजमल जी के पास आया, जयचंद जी छाबड़ा के पास आया, स्वामी जी के पास आया और आज हमारे पास है। ये है पीठ, ये परंपरा का चालू रखना, इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपको ये पता नहीं है, जब ये तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बना था ना कुंद कुंद कहान, तो उसके फाउंडरों में से हम भी हैं, उसके जन्म के क्षण से हम भी हैं। और एक थोड़ी कहानी बताऊं एक सेकंड की, कि जब जो सोनगढ़ में अपील की गई तीर्थ क्षेत्र कमेटी की और उसके लिए 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो गोदिका जी ने खड़े होकर कहा कि इसके साथ स्वामी जी का नाम जोड़ा जाए और अलग ट्रस्ट बनाया जाए तो मैं 1,11,000 बोलता हूं अकेले में। और फिर वो तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बना और वो जो आज होना, ये सारी कहानी उसके जन्म की कहानी है, जन्म से लेके तक हम आज तक उसमें शामिल रहे हैं शुरू से अंत तक। फिर ये सवाल आए कि तीर्थों की सुरक्षा, तीर्थों की सुरक्षा, तो मैंने वहां कहा कि अकेले गिरनार सिद्धेश्वर शिखर यही तीर्थ नहीं है, ये जिनवाणी जीवंत तीर्थ है और इसकी भी सुरक्षा को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, अकेले उनके लिए नहीं है। और उस वक्त नक्की हुआ कि जिनवाणी का प्रकाशन, प्रचार, महाविद्यालय की स्थापना, ये सब इस तीर्थ के माध्यम से की जाएंगी, क्योंकि ये भी जीवंत तीर्थ है। असली तीर्थ का प्रवर्तन तो ये है, मैं कि उसके किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ वो तो तीर्थ है ही, लेकिन ये तीर्थ है इसको लोग तीर्थ मानते नहीं है। अभी जयमाल शिव तक भजदान में कितनी जयमालें हो गई, कोई जयमाल का अर्थ करता है कि नहीं करता, ऐसा समय सारी पड़ रहे हैं नहीं करता है। उसमें एक पंक्ति आएगी ध्यान दिलाना, क्या कि इस जिनवाणी काय का नाम, एक सच्चा तीर्थ काय का नाम आएगा, उसमें ये शब्द आएंगे जो मैं बोल रहा हूं कि ये बुद्ध भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खड़ी थी और वो आज तक चली आई, वो सच्ची जिनवाणी गंगा है और वो ही सच्चा तीर्थ है। ये शब्द सिद्धक विधान की जयमाला में आएंगे आपके पास, किसी को सुनता हो तो लेके किताब मेरे पास आना, मैं निकाल के बता दूंगा उसमें, और जब आएंगे फिर से आपको ये बता ही देंगे। पंडित जी अब बात चल रही है कि वो जिनवाणी उस दिन से आज तक निश्चय और व्यवहार की भाषा में समझाते आए हैं उसे, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में, यद्यपि उनके ज्ञान में निश्चय व्यवहार में नहीं थे, भगवान में नहीं, क्यों तो केवल ज्ञान में नए नहीं होते, नए सिर्फ ज्ञान में होते हैं, लेकिन उनकी वाणी नयात्मक थी। क्या समझे ना, तो वो जो निश्चय व्यवहार के माध्यम से भगवान महावीर से जो जिनवाणी गंगा आज तक चली आ रही है, तो वो कहते हैं कि किनको समझाना व्यवहार से, किनको निश्चय काम का है। अब ये सवाल खड़ा हो गया, अब ये सवाल खड़ा हो गया तो मैं कहती हूँ पर समझदार लोग हैं उनके लिए निश्चय और ना समझो के लिए व्यवहार है। अब महाराज कौन समझदार और कौन ना समझ, तुम ही बताओ हमारे लिए, कि नहीं तुम समझ लेना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। क्यों वो उसकी एक गाथा चल रही है कि जो परम भाव में स्थित है वो शुद्ध में से उपदेश दिए जाने योग्य हैं, और जो अपरम भाव में स्थित हैं वो व्यवहार में से उपदेश दिए जाने योग्य हैं। अब परम भाव में स्थित कौन है और अपरम भाव में स्थित कौन है, और यदि चौथे गुणस्थान के ऊपर ही सब हैं, समझ लेना, तो फिर हमको काय को परेशान कर रहे हो, और यदि तुम्हें सम्मा दर्शन नहीं तो तुम काय को परेशान कर रहे हो। इतना जबरदस्त एक प्रश्न दयाचंद जी छावड़ा के चित्त में खड़ा हुआ था, देखो वे क्या जवाब देते हैं। उक्त कथन से स्पष्ट है कि शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव अपरम भाव है, जयसेन आचार्य के कथन से, और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव है। यह भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव और अपरम भाव को यथास्थान यथा योग घटन किया जा सकता है। उक्त कथन से तो यही प्रतीत होता है कि चतुर्थ गुणस्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नये नहीं होते, निश्चय और व्यवहार नये सम्यक ज्ञान के अंश है, अतः उनका यथार्थ रूप से होना तो सम्यक दृष्टि के ही संभव है। तथापि इस संदर्भ में इसी गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो देखो, हमने अपने बाप का कुछ नहीं रखा इसमें, हमने तो जो इतना 2000 वर्ष में मंथन हुआ कुंड कुंड से लेकर और आगे तक, वो सब आपके सामने एक जगह प्रस्तुत कर दिया। इस सब जगह आप ज्यादा के पढ़ने वाले नहीं हो और तुम्हें पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ पढ़ने चाहिए, डिक्शनरी देखना तो आती हो तो डिक्शनरी देखें, ये बात हमें जानना हो तो कहाँ कहाँ देखना चाहिए और वे किताबें कहाँ मिलेंगी और उनका अर्थ कौन बताएगा संस्कृत प्राकृत नहीं आती है तो बोले क्या करोगे। कितनी बड़ी समस्या का समाधान हमने किया है कि सब एक जगह सब ने इस बारे में जो कहा है वो इकट्ठा किया। छोटा काम देखो जहाँ तक यथार्थ ज्ञान सिद्धांत की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है हुई हो वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना धारण करना जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार में प्रवृत्त होना प्रयोजन भार है। इन्हें लिख दिया आगे ना अभी उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप आ तो गए ना अपन तक बात आ गई हो कहते हैं। अब देखिए इसमें कितनी तर्क कितना मजबूत है कि उपदेश तो मालूम सम्मान की प्राप्ति के लिए ही होता है बाद में उपदेश नहीं होता घबराना नहीं पूरी बात सुनना। दो तरह के गुरु होते हैं एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्या देते हैं तारित्व और शिक्षा गुरु क्या देते हैं सम्मा दर्शन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसके पहले देशना लब्धि होती है ना तो जिससे सम्मा दर्शन होता है वो चीज समझाते हैं। अभी दोनों गुरुओं में क्या फर्क है बड़े कौन है बड़े छोटे का निर्णय बाद में चल लेंगे अपने काम के कौन है उसकी बात करो ना क्या है? आचार्य महाराज हमारे लिए दीक्षा देंगे तो क्या देंगे है? क्या देंगे तो ये जब कहेंगे कि साहब जैन भगवान की साक्षी पूर्वक मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं मणि धर्म को पालन करूंगा और दो पांच मिनट समझा देंगे और तुम पालो उनकी छुट्टी। दीक्षा तो ये दीक्षा गुरु में दीक्षा दी तो दी क्या तुम्हारी पात्रता देख के और तुम लेना चाहते थे तो उन्होंने कह दी ठीक है लो करो फिर कल से कल कर रोजीना दीक्षा गुरु करेंगे लेकिन शिक्षा गुरु को सुबह शाम रोजीना पढ़ाएगा पसीना निकल जाएगा बेटा तुम्हारा और पढ़ाने वाले का अंतर समझ में आया है? ये तो प्रिंसिपल साहब हैं प्रवेश दे देंगे लेकिन पढ़ाएगा तो रोजीना वो प्रोफेसर जनरल अधिकारी उपाध्याय की होगी कौन है जो रोजीना पढ़ाएगा सात तत्व क्या है छह द्रव्य क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है क्यों अब देखिए ये पढ़ रहे थे अत्यंत अपूर्तिबद्ध 19वीं गाथा में और 38वीं गाथा में ये सब गाथा इनमें चुननी बढ़िया बढ़िया 19, 20, 38 क्यों दोनों लगा लगा अत्यंत अप्रतिबुद्ध लिखा ना अरे वहां तो ये लिखा है कि पिछली आठवीं गाथा ले लो अपन कि मिलेच्छ को जो मिलेच्छ भाषा नहीं समझता है उदाहरण दिया कि उसको आत्मा शब्द गुरु ने कहा तो मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देख लिया है लिखा के नहीं लिया कैसा शिष्य लिया है बोलो चैतन्य छाबड़ा कहते थे अपरम भाव में स्थित है बोलो कुंद कुंद स्वामी ने समय साल करने के लिए लिखा स्वाम मुनियों का है पढ़ने को ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए अच्छा इधर मुनियों का पढ़ने का तो है ना ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए तो मुनि तो पढ़े ग्रस्तों को पढ़ना नहीं चाहिए और मुनि पढ़ते नहीं है क्या अरे वो तो कह रहे अत्यंत प्रतिबद्ध कम मे नो कम मम्मी अहमद मह कम से कम मेड़ो कम मम जाए साखल बुद्धि अपट बुद्धो हवदी तावे जब तक है आत्मा कर्म में नो कर्म में मन शरीर स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव दुनिया में ये मैं हूँ मैं इनका स्वामी हूँ मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ ऐसा मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा क्यों तो देशना लब्धि सम्यक दर्शन के लिए है सम्यक चर्च के लिए देशना लब्धि की हो तो बताओ सांस लब्बियां दो जगह होती हैं, इस चारित्र की होती है और सात में आठ में नौ में दस में गुणस्थान में, वहां उपदेश का लेने देने का कोई काम ही नहीं है, उनमें देश में लब्धि है ही नहीं, अपूर्व का अनुवृत्तिकरण है कर्ण लब्धि है। तो यहां जो है सर्वोत्तम लब्धि विशुद्धि लब्धि देश में लब्धि मिथ्या दृष्टियों के, पहले सम्मय दृष्टियों की बात है नहीं तो सम्मय दृष्टि के होते हैं, लेकिन तू नहीं समझेगा तो सम्मय दृष्टि होगा ना, नए चक्र में जाता आती है ज्ञानी ज्ञानी भी लिखा ज्ञानी के नए होते हैं और ये भी लिखा, तो इससे कैसे बात होगी कि नए सच्चा है कि झूठा, अज्ञानी के तो होते नहीं, लेकिन नए तो ये गुरु की तरफ से हैं, नए तो ये शास्त्र की तरफ से हैं, नए तो भगवान की तरफ से हैं, तेरी तरफ से थोड़ी है। व्यवहार नए उपदिष्ट है, व्यवहार नए से किन्हें समझाए, तुमने लिखा ना कि वो आत्मा का आंखें फाड़ के देखता हुआ, तो किन्हें समझाए के पहले मुझे पता नहीं भी कितने बजे शुरू किया था, बता देना क्या हो गया है। किसे समझाए इसे बाद में देखेंगे, कल पहले ये बताओ क्या समझाए, क्यों उसने लिखा है ना कि शिष्य गुरु ने कहा आत्मा, तो शिष्य मेरे की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देखता है कि गुरु जी ने क्या कहा, ठीक है ना, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया स्वस्ति, तो कुछ समझ में नहीं आया लेकिन आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, गला पकड़ने को भी फिरता है, क्या गला पकड़ने को नहीं फिरता है, कल नहीं ना, किसे समझाने का भाव आता है, कुछ समझ में नहीं आया तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। यहां हमारे पास एक महानुभाव, हम तो सब तीसरे बार के नीचे वाले हैं, ऊपर वाले नहीं है, लेकिन तीसरे में भैया अनादि मिथ्या दृष्टि जाता ही नहीं है, क्यों बहुत विद्वान अपने को वहां मानने वाले, कितनी लंबी लंबी लिस्ट विद्वानों की साथ में लिए, कम साहब सम्म दृष्टि कितने जीवों में का एक होता है, एक एक लाख में तो एक होता है, कितने में एक होता है, मेरे से पूछा क्या क्या पूछा, सम्म दृष्टि एक लाख में एक होता है कि कितने में एक होता है, तुमने समझ पा गए क्या बेकार की बात कर रहे, फिर भी मैंने कहा प्रेम से कि भैया छह महीना और आठ समय में 608 जीव नेत्र मोक्ष से निकलते हैं, और छह महीना और आठ समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो वो बीच का भी तो अनुपात बराबर ही रहेगा ना, और एक एक कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने होते हैं ये सब लिखा है, तो उस गुणस्थान में जितने निकलेंगे उतने ही तो नए आएंगे, अभी निकल के आगे आगे जाएंगे लेकिन वही बनेगा, तो वो तो तुम लाख मास की बात कहते हो, अरबों में भी एक आदमी हो सकता है, अरे 10 मील में होता है फलाने अगर तुम्हें पता था कि हाँ तो हमारी परीक्षा लेने आए, हमने तुम्हें कब एप्लीकेशन दी थी, फॉर्म भरा था हमने तुम्हें परीक्षा बोर्ड का, चलो हटो यहां से, तुम्हें पता था तो हमसे कहते ऐसा, वो हमने ऐसा सुना है कि 10 मील में होता है, तो आपका क्या विचार है 10 मील में होता है कि 1 मील में होता है कि 500 मील में होता है, हमसे ऐसा क्यों पूछा तुमने, एक गला पकड़ने वालों के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्यों तो हमारे पास शक्ति बहुत सीमित है और हाथ जोड़ के सुनने वाले इतने ज्यादा हैं कि हम उनको ही समय नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं, एक प्रश्न मैं कह दिया कि हमको नहीं तुमसे बात करनी है, एक प्रश्न और सुनने सुन कि वो कुंभकुंभ स्वामी ने जब वो ताड़पत्र पर लिखा था ना समय सार, तो वे ताड़पत्र गीले थे कि सूखे थे, कैसे लिखा था कैसे लिखा था, ऐसा 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 बहुत 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 बोलने लग गए, तो मैंने फिर भी सरलता से कहा कि देखो गीलों पे तो कोहता नहीं है, मिट जाएंगे, और सूखे होते हैं और उनको थोड़ा पीट करके ठीक करना पड़ता, पड़ते ही हैं, फिर उन पर स्याही होती है ना, उसका कांटा होता है, उस कांटे से छेद कर करके लिखते हैं, और इसलिए वो ऐसे होते हैं कि बरसात में गले नहीं, गर्मी में जले नहीं, सर्दी से खराब नहीं हो, और वो मिटे नहीं, क्योंकि मुनिराज जंगल में बैठे बरसात आ जा कभी भी भीग सकते हैं ना, क्यों साहब? ऐसे मैंने बोले बताया, हाँ अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो वो पुलिस कौन देता था, जो खुद बनाते थे गृहस्थ ला के देते हैं, समझ में आई क्या करे? समझ में आया क्या? मैंने कहा दादाजी हमने आपको बोला है कि हमें आपको नहीं समझाना है, तो मैं कुंड की ये बात क्या करते थे कौन देते थे मैं तो देखने गया नहीं, 2000 वर्ष हो गए जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया, लेकिन तुम्हें वर्तमान के लोगों का शिथिलाकार पोषण करना है, इसके लिए तुम मेरे मुंह से ये करवाना चाहते हो, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कब कहा कि किसी में शिथिलाचार है? मैं मानते हैं और सब कुछ नहीं मानते, सब कुछ नहीं मानते, कौन मानता है? हमने कब कहा, किससे कहा, कहाँ कहा, लिखा है कि बोला है कि सुना है, क्या कहा, क्यों तुम क्यों हमारे मुंह में बदसी डलवाना चाहते हो? क्या देश में लद्दी ये बात आई ना जी कि वो व्यवहार में से भी वो कहता है उनने आत्मा कहा तो कुछ समझ में नहीं आए, वो क्या कौन से गुणस्थान वाला होगा तुम नक्की कर लो, और उनने कहा कि जो जाने देखे जिन्हें ज्ञान हो दर्शन हो चारित्र हो वो आत्मा, तो गदगद हो गया, धन्य धन्य हो गया। हाँ गुरुदेव ने भैया कहा ऐसा कहा, ख्याल में आई ना? उनने कहा स्वस्ति तो कुछ नहीं समझ में आया, तो उनने कहा कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो गदगद हो गया, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। हम बोले ना विद्यालय में पढ़ते थे, सही घटना है, तो हमारे साथ मद्रास के कर्नाटक के बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे, तुम्हारे पास प्रसाद पढ़ते थे ना कैसे, उस जमाने में भी पढ़ते थे, हमारे साथ श्रीकांत शास्त्री, श्रीकांत शास्त्री, भरत चक्रवर्ती शास्त्री, धर्म चक्रवर्ती शास्त्री, बहुत से हमारे सहपाठी हैं, अभी भी हैं दक्षिण भारत में, तो वो बेचारे आते तो कुछ समझते नहीं, रोटी दाल की भी हिंदी नहीं समझते, तो हमारे गुरु जी थे पढ़ाने वाले व्याकरण आचार्य राजेंद्र लाल जी साहब, हम सबको पढ़ाते थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था तो उनके मुंह से निकलता था कैसा विलक्षण है तू, कुलक्षण नहीं विलक्षण, ये उनकी समझ में सबसे बड़ी गाली थी, जब गुस्सा आएगा तो कोई माँ बहन की गाली नहीं देते थे, क्या बोलते थे, अब एक गधा भी नहीं बोलते थे, कैसा विलक्षण है, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया क्या कह रहा है, तो उन्होंने हम लोगों से आगे पूछा कि क्या कहा था गुरु जी ने, क्या कहा था, तो हम लोगों को जरा रसा गया, हमने कहा तेरे को माधवन की गाली दे फिर तो उसका कितना पारा गर्म हुआ कि जाकर लड़ने लग गया, हमने गाली सुना, आपने मेरे को गाली क्यों दी, आपने मेरे को गाली क्यों दी, हमने कब गाली दी तो आपने कहा है ना कि विलक्षण, लेकिन विलक्षण का अर्थ गाली होती है, माँ बहन की, तुझे किसने बताया, अब हम डरे गए भैया ने बता दिया था हमारा क्या होगा तो देखो ये आदमी का सामने कैसा शिष्य लिया, अब बोलो व्यवहार ने का उपदेश मिथ्यादृष्टि को देना है कि नहीं देना, और अच्छा मिथ्यादृष्टि को व्यवहार का उपदेश देना, तो व्यवहार से मिथ्यादृष्टि को क्या समझाना, आत्मा दिखाना, आत्मा कहा, देखो उसमें आ गई बात ना, तो समझाना व्यवहार से और समझाना निश्चय, बाकी बात कल